चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो,
शांति ओम शांति। हम बाबा के बच्चों को बाबा सदा ही एवर, हम कहते हैं एवर हेल्दी माना सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाते हैं। तो भविष्य में 20 जन्मों के लिए तो हम रहेंगे ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। सतयुग त्रेता 2500 साल तक वो नेचुरल है कि हम सदा स्वस्थ रहेंगे, कोई रोग शोक दुख कष्ट नहीं होगा, दीर्घायु होंगे और एवर वेल्दी भी हैं, यानी सभी पद्मा पद्मपति बाबा जिसे बोलता है, यथा राजा तथा प्रजा होंगे, सभी धनवान होंगे, कोई ऐसे गरीब नहीं होंगे जैसे आज की दुनिया में होते हैं। स्टेटस में अंतर होता है लेकिन धन के हिसाब से भी सभी सुखी होंगे, किसी के पास कमी नहीं होगी। इसके लिए कहते हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। और एवर हैप्पी भी होंगे क्योंकि हेल्दी वेल्दी हैं तो हैप्पी होना सहज है। दुखी कौन होता है? जो तन से रोगी है या जिसके पास धन की या साधनों की कमी है। तो जब एवर हेल्दी वेल्दी हैं तो हैप्पी भी है ही, इसीलिए देवताओं को सदा प्रसन्न चित दिखाते हैं। मंदिरों में उनके दर्शन करने भी जाएंगे तो उनके दर्शन मात्र से ही सबको सुख मिलता है क्योंकि वो स्वयं मन से सदा शांत प्रसन्न और सुखी रहे तो हमें वो अनुभूति होती है। लेकिन वर्तमान संगम युग में भी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी हैं। क्या समझते हैं, हैं या नहीं? ऐसे तो कहेंगे कहां एवर हेल्दी हैं, कोई ना कोई बीमारी तो हो जाती है ना? लेकिन बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है और जब हम अपनी प्रकृति के भी नॉलेजफुल हैं और तीनों कालों का हमें ज्ञान है तो फिर भले रोग होता भी है लेकिन इस रोग का जो कष्ट है या रोग का जो दर्द है वो हमें बीमारी का अनुभव नहीं कराता है। देखो आज की जो बीमारियां हैं, कहते हैं 70% बीमारियां जो हैं वो टेंशन के कारण होती हैं। लोगों के जीवन में टेंशन है, चिंता है, भय है और कोरोना के पीरियड में तो वो कई गुना बढ़ गया है ना। हम बाबा के बच्चों को टेंशन है, टेंशन है? नहीं है। हमें बाबा कहता है हम बेफिक्र बादशाह हैं। अगर कोई चिंता होती भी है, कोई बोझ है भी, तो बाबा कहता है मुझे दे दो। जैसे बच्चे हैं अपने माँ बाप को कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है या ये है, फिर बाद में वो निश्चिंत हो जाते हैं, फिर माँ बाप को जो सोचना है वो सोचें। तो हमारा भी माता पिता तो शिव बाबा है ना। तो अगर हम बेफिक्र रहते हैं संगम पर, बेगमपुर के बादशाह हैं, तो जो 70% टेंशन के कारण बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की बीमारी होती है, पेट की बीमारी यानी एसिडिटी वगैरह, इंडाइजेशन, और भी हेडेक, नींद नहीं आना, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो टेंशन के कारण होती हैं। तो उन बीमारियों से तो हम बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी 30% बीमारियां दूसरे कारणों से भी होती हैं। दूसरे कारण हम सब जानते हैं, खानपान के वजह से हो सकती हैं, मौसम में बदलाव की वजह से हो सकती हैं। और मौसम जैसे अब कोविड आ गया है ना, इन्फेक्शंस हो जाते हैं मौसम के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, पोल्यूशन के कारण, और भी कई लोगों को जेनेटिक बीमारियां होती हैं। वो जेनेटिक बीमारियां कहाँ से आती हैं? पूर्व जन्मों से। हमने पूर्व जन्मों में जो हिसाब किताब बनाए हुए हैं वो हम कैरी करते हैं, तो वो भी हमें हिसाब किताब चुकतू करने, ये भी हमें नॉलेज है। तो मानो कोई रोग हमारे शरीर में आ भी जाता है, छोटी मोटी बीमारी होती है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, वो तो ठीक है, हमने डॉक्टर को दिखाया 5-7 दिन में वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कोई असाध्य बीमारी होती है जिसे हम पुरानी बीमारी कहते हैं, एक बार लगी माना जीवन के साथ ही जाएगी, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। आप जैसे मानो ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज हो गई, या हार्ट की बीमारी हो गई, थायराइड हो गया, कुछ भी ऐसी बीमारियां होती हैं, या किसी को कैंसर हो जाता है, कुछ भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक बार लगने के बाद जीवन भर हमें उसके साथ जीना है। मानो तो भले बीमारी होती है, लेकिन वो बीमारी के कष्ट हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम आत्मा हैं, ये हमें ज्ञान है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, शरीर के माध्यम से ही चुकतू करेगी ना। तो हम और ही महसूस करते हैं कि बीमारी होने के बाद हम हल्के हो गए, हमारा पुराना हिसाब वो चुकतू हो गया। तो वो कष्ट के चिन्ह जो चेहरे पर नहीं होते, तो वो सेवा करता है जो हम अपनी दादियों में देखते थे ना। एक तो होता है बीमारी कॉन्शियस होना, और एक होता है सोल कॉन्शियस होना। बीमारी कॉन्शियस होते हैं ना, छोटी सी भी होगी, बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी सी भी बात होगी तो सोचते रहेंगे ये हो गया मुझे, ये हो गया। हाँ, होगा सीने में थोड़ा सा दर्द हुआ, कहीं मेरे को हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया कहीं, सीधा ही हाँ सिर में दर्द हो गया, कहीं अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, मतलब राई को पहाड़ बनाना। बीमारी कॉन्शियस होना माना छोटी सी बीमारी, छोटा सा कोई सिम्टम हुआ और बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है अगर आप बीमारी कॉन्शियस हैं तो बीमारी बढ़ती है, लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, हम हैं ही सोल कॉन्शियस ना, हम हैं ही आत्मा, तो फिर रूहानियत की शक्ति जो हमारे अंदर रहती है, और बाबा से जो हमारा संबंध है, जो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, उससे हमारी बीमारी सूली से कांटा हो जाती है। वो हम कांटे से उसको सूली बना रहे हैं, और यहाँ सोल कॉन्शियस होंगे तो सूली से कांटा हो जाएगी, यानी हम उसे सहज पार कर जाएंगे। और हमें महसूस भी नहीं होगा कि वो हमें बीमारी है भी। फिर बाबा दवा और दुआ दोनों कहता है। बाबा कभी ये नहीं कहता कि आप दवाई मत लो। आज इतनी पैथीज हैं, इतना चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ा है, उन्नति हुई है उसकी, किस लिए ना? बाबा कहता है 100 वर्ष का जो विज्ञान है ये किसके लिए है? बच्चों के लिए है और नई दुनिया की स्थापना के लिए है। जब बाबा का अवतरण हुआ इस दुनिया में, तब से ही विज्ञान की प्रगति शुरू हुई है। तो इसीलिए कोई भी पैथी जो आपको सूट करती है उससे इलाज ले लो, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई ले लो। और बाबा कहता है दवाइयां भी जो हैं, आप दवाई नहीं खा रहे हैं, ये भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, कलयुगी फ्रूट्स हैं। तो ऐसे समझकर खाओ कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं। जैसे फ्रूट रंग बिरंगे होते हैं, ऐसे दवाइयां भी रंग बिरंगी होती हैं। तो उनको भी पॉजिटिव फीलिंग से खाना है ना, बाबा की याद में हम ये ले रहे हैं, ये मेरी बीमारी से मुझे मुक्त करने वाली है, ये दवाई मेरे शरीर को शक्ति देने वाली है। ऐसे नहीं, अरे अब मुझे दवाई खानी पड़ रही है, इतनी गोलियां खानी पड़ रही हैं, कब तक खानी पड़ेंगी ना। कई बार भारी होके गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं। भारी होके खाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं ना हम उसको। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि यही समझकर खाओ हम फ्रूट खा रहे हैं और ये मेरे शरीर को शक्तिशाली बना रही, मेरे शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। दवा और बाबा की दुआ वो हमने ली और हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी की जड़ कई बार हमारे मन में होती है। जैसे कहा ना कि कितनी बीमारियां तो टेंशन के कारण हो रही हैं। तो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है और हमारी जो शक्तियां हैं, जो आत्मा के गुण हैं, वो हमारे शरीर के सभी अंगों से संबंध रखते हैं। कोई ना कोई उस गुण शक्ति की कमी हमारे अंग में हुई है तभी वो रोगी हो रहा है ना। हमारे आत्मा में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये 7 गुण हम कहते हैं निजी गुण। तो हरेक गुण का संबंध हमारे शरीर के अंगों से है। तो हम योग का प्रयोग करें, हम सुनते भी हैं, अपने यहाँ जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो कराते हैं। तो योग का प्रयोग माना, जैसे मस्तिष्क का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान के गुण से है, हृदय का संबंध प्रेम के गुण से है, हमारे फेफड़ों का संबंध शांति से है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का संबंध जो है वो सुख से है, हैप्पीनेस, और मांसपेशियों का जो संबंध है, हड्डियों का संबंध, वो शक्ति से है, हार्मोन्स जो है वो आनंद के गुण से जुड़े हुए हैं, और प्यूरिटी का संबंध हमारे स्किन और इम्यूनिटी से है, यही हमारे सारे सिस्टम है। तो यदि मानो हृदय के लिए प्रेम है ना, प्रेम का गुण है, अगर हम प्रेम से रहते हैं अपने जीवन में, हमें सबसे प्रेम मिलता भी है, हम देते भी हैं, और हमारे मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, किसी के प्रति कोई वैर भावना नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, या नफरत नहीं, जो भी प्रेम के विपरीत है, या हम बहुत गुस्सा नहीं करते हैं, नाराज नहीं रहते, या अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, तो हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर प्रेम की बजाय जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो ज्यादा होने लग जाएं, अब किसी किसी के जीवन में ऐसा होता है, हमारे आसपास जो हैं उनके प्रति हमारा जो भाव है वो बदल जाता है, उनकी कमियां हम ज्यादा देखते हैं, उनकी गलतियां हम ज्यादा देखते हैं, फिर उनको माफ नहीं कर पाते, और रहते उन्हीं के साथ हैं तो सारी फीलिंग्स कैसी हो गई, मेजॉरिटी टाइम फीलिंग कैसी हो गई हमारी, तो उसका हार्ट पर असर आना शुरू हो जाएगा। एक ही दिन में नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद कोई ना कोई बीमारी हार्ट से संबंधित होगी, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, चाहे धड़कन बढ़ेगी पहले, फिर ब्लॉकेजेस होने लग जाएंगे। तो अपने यहाँ एक प्रोजेक्ट करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एग्रेशन प्रोग्राम ग्लोबल हॉस्पिटल में, वो हार्ट के मरीजों के लिए करते हैं। तो उनको यहाँ पर जो जो पेशेंट जिनके ब्लॉकेजेस हैं, माना जिनको एंजियोग्राफी कराई और जिनके ब्लॉकेजेस निकलते हैं और वो बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहते, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, या जो भी कारण है, तो फिर वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर उनको 7 दिन रह करके ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग में उनको लाइफस्टाइल क्या बदलनी है, क्या परिवर्तन लाना है, वो सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो भोजन, हमारा जो खान पान है वो हेल्थ के लिए कैसा होना चाहिए। तो हमारा खान पान होना चाहिए हाई फाइबर, लो कोलेस्ट्रॉल, लो सॉल्ट और लो शुगर, ये डाइट होना चाहिए हमारा। हाई फाइबर माना फल सब्जियां ज्यादा खाना, साबुत अनाज खाना। लो कोलेस्ट्रॉल माना तला भुना जो हम खाते हैं, फ्राइड फूड जितना भी हम खाते हैं, या फास्ट फूड हम खाते हैं, फास्ट फूड में भी बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट वो होना चाहिए हमारा। फिर लो सॉल्ट, बहुत लोग सॉल्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, तो ये सब हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर हमने कभी कभी खाया वो अलग बात है कि आपने महीने में एक बार खा लिया, 15 दिन में एक बार खा लिया, लेकिन कुछ लोगों की रोज की डाइट होती है, क्योंकि जो हाई फाइबर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है वो बहुत टेस्टी नहीं होती है। स्वादिष्ट भोजन कौन सा होता है, लो फाइबर वाला। फास्ट फूड कितना टेस्टी होता है, और जो फ्राइड है, कचौड़ी समोसा पकौड़ी पूड़ी और भी बर्गर पिज्जा, ये सब सब टेस्टी आइटम होते हैं ना, तो ये खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या कहेंगे, जीभ को देखना है या हेल्थ को देखना है, हेल्थ को देखना है ना? नहीं, फिर हम बीके भाई बहने क्या करते हैं, हम वैसे नहीं खाते हैं बहन जी, वो तो बाबा का ब्रह्मा भोजन है ना, भोग बना है आज। अब भोग में स्वीट बनता ही है, भोग में फ्राइड बनता ही है। अगर मुझे परहेज है, मानो मेरे को डायबिटीज है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, हो ही जाता है, वो तो कोई बात नहीं, शरीर के हिसाब किताब है, जैसे कहा मानो ज्ञान में आने के पहले ही हो गया हमको, है ना। अब हम बचपन से सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं, तो हमने कितने टेंशन्स लिए होंगे अपनी लाइफ में पहले, उसका असर आ गया हमारे शरीर पर, हमको बीपी हो गया, शुगर हो गया, अब हमें परहेज करना है, हार्ट की बीमारी हो गई, तला हुआ नहीं खाना है, और भोग में हमारे सामने ऐसी ही चीजें आती हैं। ब्रह्मा भोजन में भी अच्छा ही बनाते हैं, क्योंकि सभी भाई बहने खाएंगे, अब सब थोड़ी बीमार हैं, वो तो कोई कोई बीमार है ना, तो फिर हमने भी खा लिया, क्योंकि भोग है ना, बाबा का एक्सक्यूज देते हैं, ये तो भोग है ना, ब्रह्मा भोजन है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। यहाँ भी जैसे बाबा है ना, भोग खाते नहीं हैं, बाबा को भोग लगाते हैं ना, बाबा तो वासना लेते हैं, तो हमें भी उसको भोग ही लगाना है, फिर पूरा नहीं खाना है। अगर मीठा है तो कितना खाना है, जैसे भोग खाते हैं, जैसे प्रसाद खाते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ के नॉलेजफुल हम है ना, मेरी प्रकृति के अनुसार मेरा खान पान कैसा होना चाहिए वो मुझे मालूम है। तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये सिखाते हैं उनको कि खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। फिर रोज एक्सरसाइज भी करना है। आज की लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि हमारे सबके घर में मशीनें हैं काम करने के लिए आजकल, तो हम शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर होती है। ऑफिस में बैठकर काम करते रहते हैं, घंटों चेयर पर बैठे होते हैं, तो फिर हमारे शरीर को जो मूवमेंट मिलना चाहिए, हमारे ब्लड को जो सर्कुलेशन मिलना चाहिए और जो फेफड़ों के सांस की गति बढ़नी चाहिए वो सब नहीं, और जो जॉइंट मूवमेंट होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए रोज आधा घंटा मिनिमम एक्सरसाइज भी हमें करना है, व्यायाम करना है। कुछ लोग योगासन करते हैं, अगर योगासन कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन किसी ना किसी रूप में व्यायाम हमें आधे घंटे से 40-45 मिनट तक करना है, और नहीं तो ब्रिस्क वॉक करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक कर सकते हैं तो चलना है, वो भी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले, वो बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अच्छी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं सूर्य की रोशनी में, और जब डार्क होता है तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर फर्क हो जाता है। और उसके साथ साथ नींद हमारी कैसी होनी चाहिए? रात को हम बाबा की याद में सोते हैं, गहरी नींद में सोए। कईयों की आदत होती है सोने जाते हैं तो सारे दिन की चिंताएं वहीं शुरू हो जाती है। सारे दिन काम में होते हैं तो इतना नहीं वो मन में चलता है, लेकिन बेड पर जाते हैं तो फ्री हो जाता है ना माइंड, तो फिर चिंता करना शुरू करते हैं तो नींद ही फिट जाती है, नींद नहीं आती वो भी शिकायत होती है फिर। लेकिन हमारी विधि क्या है सोने की? बाबा ने कहा मुझे चार्ट दे दो। बाबा को चार्ट दिया, कुछ भी हुआ दिन भर में, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, होता है, तो हम हल्के हो गए और उसके बाद बाबा की याद में सो गए। तो कैसी नींद सोएंगे? गहरी नींद। तो अच्छी हेल्थ के लिए रोज हमें कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे कहते हैं, पर बाबा हमें कहते हैं निद्राजीत बनो, है ना। तो ब्राह्मणों की नींद 5 से 6 घंटा, उससे अधिक नहीं। कुछ एक की तो 4 घंटे में ही काम चल जाता है। ज्यादा नींद किनको चाहिए? जिनको मानसिक थकान बहुत होती है, जो मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा नींद चाहिए होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को रेजुविनेट करने के लिए फिर हमें डेल्टा स्टेज जो होता है, मेडिकल की भाषा में उसे कहते हैं डीप रिलैक्सेशन, जो है वो डेल्टा स्टेज में आता है, तो उसके लिए फिर हमें अधिक नींद चाहिए होती है। तो हम अपने इन सब जीवन शैली में जब परिवर्तन लाते हैं, जैसे कहते हैं ना हमारा स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में, तो कई बीमारियों से, मेजोरिटी बीमारियों से हम सेव हो जाते हैं। तो ये देखा गया उस कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन के प्रोग्राम में, उनको ये भी सिखाते हैं। हम तो सब राजयोग करते हैं रेगुलर, पर उसमें तो बहुत पेशेंट अज्ञानी भी होते हैं जो आते हैं, तो उनको राजयोग सिखाते हैं कि राजयोग के द्वारा अपना स्ट्रेस मैनेज करो, रोज योग करो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि बीमारी आपकी जो उसकी जड़ है वो आप स्ट्रेस के कारण है। तो वो जो मेडिटेशन करते हैं और वो फॉलो करते हैं 6 महीना 1 साल, दोबारा रिपोर्ट कराते हैं उनका, तो ये देखा गया कि 90% मरीज जो उसमें ज्वाइन करते हैं, उन शिविरों में आते हैं, उनके ब्लॉकेजेस बिना बाईपास सर्जरी के खुल जाते हैं, और अब तक खुले हैं इतने मरीजों, हजारों के वो बाईपास खुल गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी हेल्थ हमारे ही हाथ में है। तो जब हमें समझ में आता है कि इसके कारण मुझे बीमारी आई है, हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं ना कि मेरे मन की कौन सी स्थिति मेरी इस बीमारी के कारण बनी है। अब जैसे हृदय के लिए मैंने बताया ना, तो उनको यही सिखाते हैं कि अब हार्ट की बीमारी है, माना प्रेम की कमी है, तो बाबा प्रेम का सागर है, शिव बाबा से हम योग लगाएं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा से वो प्रेम की शक्ति अपने में भरना, वो अनुभव करना, उस ईश्वरीय प्यार को अनुभव करते हुए अपने हार्ट को हम सकाश देते हैं, यानी महसूस करते हैं कि वो वाइब्रेशंस जो हैं मेरे हार्ट को हील कर रहे हैं, मेरे सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं, मेरा हृदय स्वस्थ है ना। ये विचार फिर हम देते हैं योग करने के बाद। आपने आधा घंटा एक घंटा पावरफुल योग किया, बाबा से योग लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक हमें ये हीलिंग वाइब्रेशंस अपने हृदय को देने हैं। और जो बताया खान पान में परिवर्तन और वो सब व्यायाम वगैरह करना, वो भी हम कर रहे हैं, तो उसके इतने अच्छे परिणाम मिलते हैं। और मानो पेट की बीमारी है, पेट की बीमारी के लिए जैसे कहा सुख चाहिए ना, सुख स्वरूप है आत्मा, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है कि हम छोटी छोटी बातों में फीलिंग में आ जाते हैं। फीलिंग में आना माना दुखी होना, और फिर वो कई दिनों तक वो फीलिंग मेरे मन से जाती ही नहीं है। जब ऐसी नेचर है हमारी, तो बहुत जल्दी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, या कोई बात में हम चिंता ज्यादा कर लेते हैं। बात तो छोटी सी होती है लेकिन बहुत सोचते हैं उसको, कई लोगों की बहुत सोचने की आदत होती है ना, उसका असर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है। अब मैंने समझ लिया कि मेरी बीमारी की रूट कहाँ है, वैसे ही हमें योग लगाना है, माना बाबा से हम, बाबा सुखदाता है, सुख का सागर है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, वो सुख को फील करते हुए, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए, उस सुख के वाइब्रेशन मुझे अपने स्टमक को देना है, तो वो हीलिंग होगी। तो इस तरह से हम शक्तियों के द्वारा, जो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, वो भी हमारे लिए दवाई का काम करती है। पर बाबा हमें ये नहीं कहते कि केवल राजयोग से ही हमें स्वस्थ होना है, दोनों का सहयोग हमें लेना है, जो कहा दवा और दुआ, क्योंकि प्रकृति के ये पांचों तत्व तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान तत्वों के लिए फिर हमें थोड़ा दवाई का सहयोग भी लेना होता है। लेकिन हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं क्योंकि हम योग का प्रयोग भी करते हैं। और मुझे याद है हमारी दादियां, क्योंकि हम दादियों के समीप रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमारे महारथी भाई बहनों को बीमारियां नहीं आती हैं, सभी को आती है बीमारी, हॉस्पिटल में भी वो भर्ती होते हैं, लेकिन वो बीमारी में उनकी स्थिति इतनी अच्छी रहती है कि वो हॉस्पिटल में भी सेवा होती है, जहां जब भी वो हॉस्पिटल होते हैं वहां के डॉक्टर्स की सेवा होती है, वो वंडर खाते हैं कि अच्छा ये मरीज हैं, और है ना, मरीज सारे मरीज तो हमें कैसे मिलते हैं और ये हमसे कैसे बात करते हैं। गुलजार दादी जी जब 1988 में बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तब वहां पर डॉक्टर अशोक मेहता वो निमित्त थे उनका इलाज करने के लिए, तो वो जब दादी जी से मिलने आते थे तो दादी हमेशा उनसे मुस्कुराते हुए मिलती थी, और दादी कभी कोई शिकायत नहीं करती थी कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, और पूछ भी लेते थे उनसे कि डॉक्टर आप ठीक हैं ना, तो वो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उस समय वो ज्ञान में नहीं थे, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में भी नहीं थे, तो वो और मरीजों से मिलकर आ रहे हैं, तो और मरीज तो कंप्लेन ही कंप्लेन, डॉक्टर ये दर्द हो रहा है, ये दवाई कैसे लेनी है, ये ऐसा वैसा, जो भी मतलब किसी की कंप्लेन करना, दूसरे की, नर्स की, या जो भी, माना कंप्लेन के बिना तो कोई मरीज होता ही नहीं था। लेकिन वो जब दादी से मिलते थे तो दादी तो और ही खुश कर देती थी उनको, तो उनको आश्चर्य होता था। वैसे तो दादी से उनको पता ही था कि ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, लेकिन इतनी पावर इनमें कैसे आती है, ऐसे उनको क्वेश्चन उठता था। तो उन्होंने पूछा दादी को कि दादी आपको कोई दर्द नहीं होता है? तो दादी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मुझे खास दर्द नहीं है, दवाई तो आप दे रहे हैं, हम लेते हैं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। फिर कहा कि है ना, और आप खुश भी नजर आते हैं। तो दादी ने कहा ये हमारे मेडिटेशन की पावर है, हम रोज भगवान को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसकी शक्ति है। तो फिर दादी ने उनको निमंत्रण दिया माउंट आबू आने का, उन्होंने स्वीकार किया और आए यहाँ आबू में। तो जब वो आबू आए और उन्होंने देखा अच्छा ये इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उनको थॉट आया अरे यहाँ तो हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि इतने भाई बहने यहाँ आते हैं, कभी भी कोई किसी को भी अचानक इमरजेंसी हो सकती है, तो हॉस्पिटल का थॉट उन्होंने दिया। और उसके बाद फिर समझो बाबा से जैसे पूछते हैं, बाबा से पूछा और बाबा ने भी यस कहा, और ये हमारा जो माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल बना है वो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल बना, और उसकी पूरी सेवाओं की जो निमित्त बने, जिसको हम कहेंगे निर्देशक रहे, वो डॉक्टर अशोक मेहता ही रहे। और फिर वो बाबा के समीप भी आए, बाबा के बच्चे बन गए, माना क्या कहेंगे, वारिस बन गए। तो देखो दादी की स्थिति ने कितनी सेवा की, और वो एक हॉस्पिटल नहीं खुला, ग्लोबल हॉस्पिटल खुला, फिर बॉम्बे में बड़ा हॉस्पिटल खुला, फिर उसके बाद यहाँ शांतिवन में भी आज दो हॉस्पिटल हैं हमारे। देखो कितना बाबा की सेवाओं का विस्तार और कितनी डॉक्टरों की सेवा हुई। और निमित्त कौन बना? हमारी दादी गई हॉस्पिटल और इतनी बड़ी सेवा हुई उससे। ऐसे ही हमने बड़ी दादी को भी अनुभव किया। तो कई बार ऐसा होता है कई जब हम बीमार होते हैं बाबा के बच्चे, तो हमारे चेहरे से लोग पता नहीं लगा पाते कि हम बीमार भी हैं या नहीं। हम वो कब बाई चांस कहेंगे, वैसे तो बीमारी का वर्णन नहीं करना चाहिए ना, कईयों की आदत होती है, कईयों की होती है सोचने की, कईयों की वर्णन करने की आदत होती है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, होगा थोड़ा सा सिर दर्द, 10 बार बोलते रहेंगे दिन में, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, यार थोड़ा सा घुटने में दर्द होगा, जिसको मिलेंगे उसको सुनाते रहेंगे, अब सुनाएंगे तो क्या होगा, उसको भी दुखी करेंगे बेचारे को। तो एक वर्णन करने वाले होते हैं बहुत, लेकिन हमने कभी भी जो हमारी दादियां हैं, कभी भी दादियों को अपनी बीमारी का वर्णन करते हुए नहीं सुना। और कई भाई बहने भी होते हैं ऐसे कि वो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इनको कोई बीमारी है, ना चेहरे से पता चलता है ना वो मुख से इसका वर्णन करते हैं, पर समझो कभी कहना भी पड़ता है मानो, तो वो कहेंगे ना तो सामने वाला मानेगा नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं आप तो बीमार लगते ही नहीं हो, क्योंकि चेहरा इतना खुश है, वो चेहरे पर वो चमक होती है, तो वो बीमार जैसे लगते ही नहीं है। तो हम एवर हेल्दी का अनुभव भी वर्तमान संगम युग पर कर सकते हैं, और हमें रहना है क्योंकि ये शरीर हमारा वैल्यूबल है। अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, है ना, और अगर हम हेल्दी हैं तो ही जो भी हम सेवा करना चाहें बाबा की वो कर पाएंगे, और नहीं तो हम सोचेंगे अब मैं मुझे सेवा करनी है लेकिन मेरे को तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं कैसे सेवा करूं, या मैं कैसे पुरुषार्थ करूं बाबा का, मेरे शरीर में तो ये तकलीफ है वो तकलीफ है, और मानो कभी शरीर छूट भी जाता है, होता है ना कईयों। अब कोरोना में क्या हुआ, कई लोगों का अचानक शरीर छूटा, बाबा तो बच्चों को भी कहते हैं कि अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का रखो, समय किसी का भी बताकर नहीं आने वाला है, कोई बताकर आएगा क्या अंतिम समय, अचानक कभी भी जाने का समय होगा तो हम पास कैसे होंगे उसमें, कैसे जाना है, शरीर भी छोड़ना है तो कैसे छोड़ना, अंतमति सो गति कहता है ना बाबा। तो अगर मानव शरीर छूटता भी है किसी भी बीमारी के कारण, तो भी खुशी खुशी जाना है, क्योंकि मालूम है हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ है। अभी अभी क्या होगा, जाएंगे बाबा की याद में तो एडवांस पार्टी में, बाबा सेवा में भेजेंगे, और उसके बाद सतयुग में। सतयुग तो सदा है ही सुख की दुनिया, हम तो मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। तो हमको तो आगे भी, यहाँ भी है तो भी बाबा की सेवा में है, तन बाबा को दिया है, मर्जीवा जन्म है ना, ये मर्जीवा जन्म है या नहीं है, तो अभी भी हम मर्जीवा हैं और आगे भी जाएंगे तो भी बाबा जहाँ सेवा कराएगा वहां हम सेवा करेंगे। तो इसको मृत्यु नहीं कहते, जैसे बाबा संगम सतयुग के लिए हमें कहते हैं ना, सतयुग में भी शरीर छोड़ेंगे लेकिन लेकिन दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही मालूम है कि कहाँ जाना है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा, पहले से ही मालूम है कि कहाँ जाकर के अब हम जन्म लेने वाले हैं। तो यहाँ भी तो हमें मालूम है ना हमारा भविष्य क्या है, ज्ञान है ना, समझ है, तो इसीलिए सहज जाना है। पर अगर मानो हम जाते हैं और हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, दूसरे जन्म में हम ब्राह्मण तो नहीं बनेंगे, अगर बने भी सही मानो तो 15 साल तक तो वो पूरी समझ भी नहीं आती, फिर इतना समय भी कहाँ है। तो जो भी पुरुषार्थ करना है अभी इसी शरीर से करना है, ये शरीर हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है जैसा भी है ना। तो इसीलिए कहा बाबा हमें कहते हैं कि नॉलेजफुल बन करके, इस प्रकृति के भी नॉलेजफुल बन करके हमें खुद को हेल्दी रखना है। बाबा की याद और सेवा, दुआएं भी हमारी आयु को बढ़ाती हैं, कहते हैं ना। बाबा कई बार दादियों से मिलते थे तो दादियों को कहते थे कि सेवा की दुआएं मिल रही हैं और ये दुआएं आपकी आयु को बढ़ा रहे हैं। याद से तो बढ़ती है, बाबा मुरलियों में हमें कहते हैं कि जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हमारी आयु बढ़ती है, लेकिन दुआएं देना और दुआएं लेना ये भी हमारे शरीर की आयु को बढ़ाते हैं। तो जो भी विधियां बाबा ने हमें दी हैं हमें यूज करना है। फिर हम एवर वेल्दी भी हैं। एवर वेल्दी कौन सा धन मिला है हमें दुनिया में, तो आज स्थूल धन को इतना महत्व देते हैं, धन को ही शक्ति मानते हैं, धन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, धन ही प्रतिष्ठा है समझो आज के समाज में। तो लोग धन के पीछे ही भागते हैं, आज की भागदौड़ की जिंदगी है इंसान की, किस लिए सोचते हैं कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें, अपना सब कुछ हमारे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और हमारे बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, जो भी मतलब वो समझते हैं कि सब कुछ ये सब धन से है। लेकिन बाबा ने हमें कौन सा धन दिया है, हमारे लिए सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है, और हम ज्ञान धन से धनवान हैं जो अविनाशी धन है। और ज्ञान धन बाबा कहता है सब धन का राजा है, जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति भी दासी हो जाती है। प्रकृति दासी होने का मतलब क्या है कि प्रकृति के जो भी साधन है वो हमें स्वतः ही प्राप्त होते हैं, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी होती हैं। पूरी होती है नहीं होती है, बाबा कहता है कि अगर मेरे पास ज्ञान धन है तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो जरूर पूरी होंगी, वो गारंटी है बाबा की। बाबा कहता है कि इस जन्म में आप करोड़पति बन जाओगे ये इच्छा रखो, वो इच्छा बाबा पूरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस जन्म में साहूकार हो गए तो यहाँ बैठे होते बाबा के होते क्या? बाबा कौन है, गरीब निवास है। तो आज हमारे पास उतना ही धन है जितना आवश्यक है रहने खाने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो बाबा हमें मिला है, नहीं तो हम माया के बन जाते। आज भी अगर हम करोड़पति हो जाएंगे ना तो माया खींचेगी। मुरली में था ना आज, माया कैसे कैसे रूप धर के आती है ना, अनेक रूपों में मीठे मीठे रूप भी धर करके माया आती है, तो ये भी माया आ जाती है कई बार। तो उस धन के पीछे हमें नहीं जाना है। बाबा कहता है, बाबा की गारंटी है, बाबा आपको लास्ट तक दाल रोटी खिलाएगा। 36 प्रकार के भोजन खिलाने की गारंटी नहीं है, लेकिन दुनिया में हो सकता है ना कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कोरोना के टाइम हम सब बंद हो गए घरों के अंदर, ऐसे कर्फ्यू लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो लोगों को खाने को भी ना मिले, लेकिन बाबा के बच्चों को दाल रोटी मिलेगी, ये बाबा ने गारंटी की है। तो 36 प्रकार का भोजन बाबा नहीं खिलाएगा, लेकिन हमारी आवश्यकताएं सब पूरी होती रहेंगी। यूं बाबा हमें कहते हैं, आपके पास साधन है, धन है, यूज करो उसे, बाबा की मना नहीं है। आपको मकान चाहिए, सोचते ना हमारा एक घर हमारा होना चाहिए, तो हमारी आवश्यकता है ना, बेसिक नीड है, जिसको रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं लोग, है ना, ये तो हमारी आवश्यकता है। या फिर सोचते हैं एक गाड़ी भी होनी चाहिए, और भी जो भी सुख के साधन है, ये तो होना ही चाहिए ना हमारे पास, और हमें मिलता है, हमारे पास इतना पर्याप्त धन है कि ये सब हम करते हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, सब सुख के साधन भी हैं, मेजोरिटी के पास होते हैं, कोई कमी नहीं होती है, वो साधन है, यूज करो। लेकिन बाबा कहता है वो साधन हमें साधना की स्थिति से नीचे नहीं ले आए। हमारा लक्ष्य क्या है ना, कई बार क्या होते हैं, वो साधन हमारे समय को वेस्ट करते हैं, हमारी शक्तियों को वेस्ट करते हैं। आज देखो मोबाइल है, मोबाइल हमें पुरुषार्थ में उन्नति में भी मदद कर सकता है, अगर हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं हम तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। वही मोबाइल को हमने दुरुपयोग कर लिया, गलत तरीके से प्रयोग कर लिया, तो क्या होगा, हम गिरती कला में भी जा सकते हैं। तो साधन को हमें अनासक्त रूप से न्यारे होकर के, जो बाबा ने हमें विधि बताई है, उस विधि से हमें प्रयोग करना है। और दुनिया में भी हम कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान से ही कमाई होती है। दुनिया में भी देखो जो लोग ऊंची पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं उनकी इनकम कैसी होती है, वो अच्छा कमाते भी हैं। तो यहां भी हम ज्ञान धन की कमाई से पद्मा पदम पति बन रहे हैं। हम सिर्फ एक जन्म नहीं कमा रहे हैं, हम कितने जन्म का कमा रहे हैं, 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। बाबा कहता है एक कदम आपने बाबा की याद में उठाया और कितनी कमाई हुई पद्मों की। बाबा की श्रीमत प्रमाण, बाबा के याद में किए गए कर्म पद्मों की कमाई जमा करने वाले। संगम युग जमा करने का युग है, आज भी सुना ना मुरली में, काम ही क्या है जमा करने का। तो हम सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसा बिजनेसमैन कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ना, आप सौदागर हो, बाप से सौदा करते हो, तो हमने क्या सौदा किया है। दुनिया में बिजनेसमैन कमाएंगे, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एक दिन में करोड़ कमा लेंगे, चलो कई करोड़ कमा लेंगे, पर एक कदम उठाएंगे और पद्मों की कमाई हो जाए, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता ना, वो कौन कर सकता है, हम ही कर सकते हैं, हम कर रहे बाबा के बच्चे। और वही कमाई प्रालब्ध के रूप में हमें 21 जन्म प्राप्त होती है, तो कितने धनवान हैं। और आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि देखने में कैसे हैं, साधारण हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन होंगे, इतनी कमाई करने वाले होंगे, शक्ल देख करके तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन आत्मा जो है, आज भी कहा ना बाबा क्या नहीं देखता है, बाबा ये सब नहीं देखता है, लेकिन हमारी आत्मा तो उस योग्य है। हमने बाबा को पहचाना, वो दिव्य बुद्धि हमें मिली, बाबा के सब खजाने, सारा वर्षा हमें मिला। आज हमारे पास सिर्फ ज्ञान धन नहीं है, शक्तियों के भी खजाने हैं, गुणों के भी खजाने हैं, आज समय का धन कितना बड़ा धन है हमारे पास, है ना। ये संगम युग का समय कितना वैल्यूबल है। जितने भी समय, जितने भी साल हमें मिले हैं संगम युग के, एक एक सेकंड बाबा कहता है एक साल के बराबर है, कि हम एक एक सेकंड में इतनी कमाई कर सकते हैं, या पूरे कल्प की जो कमाई करनी है हमें इसी समय में करनी है, तो इस समय को भी हमें वेस्ट नहीं करना है, वो भी हमारे लिए धन की तरह है। तो हम एवर वेल्दी भी हैं, भगवान के द्वारा जो हमें प्राप्तियां मिली हैं उनसे हम एवर वेल्दी हैं। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं, और धन तो विनाश भी हो जाएगा दुनिया में, है ना। लोग स्थूल धन, स्थूल चीजें किसी को दान देंगे तो कम हो जाएगा, और बाबा कहता है आपका तो बढ़ता है, आप जितना दान देंगे और ही वो बढ़ता जाता है। और ऐसे ही अगर हम एवर हेल्दी वेल्दी हैं तो हैप्पी तो है ही है, खुश है, सदा सदा खुश रहना, एवर हैप्पी माना। संगम युग है ही खुशियों और मौजों की जीवन। तो एक होता है कभी कभी खुश है, कभी कभी कोई कोई बात आ जाती है तो मन उदास हो जाता है, मूड ऑफ हो जाती है, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या कहेंगे। सदा खुश हैं, चेक कर लो अपने आप को, सदा खुश हैं। तो सदा खुशी का आधार हमारा क्या है? हमारा खुशी का आधार हद की प्राप्ति नहीं है। दुनिया में तो हद की प्राप्तियों के आधार पर खुशी होती है। कैसे खुशी होती है? जो मैंने इच्छा की वो मुझे मिल गया, है ना, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो खुश, या जो व्यक्ति को हम पसंद करते हैं वो मिल गया तो खुश, जो सफलता हम चाहते हैं वो सफलता हमें मिल गई तो खुश, जितना धन कमाना चाहते हैं, हाँ, मानो सोचते हैं ना कि वो ये बन जाएं फिर इतना धन कमाएं तो हम खुश होते हैं, या हम सोचते हैं कहीं बाहर घूमने चले जाएं थोड़े दिन, हाँ, लाइफ में बहुत टेंशन है, बाहर घूमने जाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे, तो घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं खुशी के लिए, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, या फिर क्या कहेंगे, रेस्टोरेंट में जाकर के खाएंगे। विदेशों में तो यही करते हैं लोग कि सारे अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बाहर जाकर के खाएंगे पिएंगे, या अब कुछ लोग सिनेमा देखते हैं, अपनी अपनी रीति से मनोरंजन करते हैं खुशी के लिए, माना खर्चा करते हैं। कितना खर्चा करते हैं दुनिया में आज लोग, और आज भी बाबा ने हमें कहा ना कि बिना खर्चे के क्या प्राप्ति होती है हमें, हम परम धाम भी पहुंचते हैं तो बिना खर्चे के हम पहुंचते हैं, वो तो कितना साइंस वाले खर्चा करते हैं, तो हमारी खुशी के लिए भी हम क्या खर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी खुशी का आधार बाबा है। कौन मिला है हमें, कौन मिला है, पाना था सो पा लिया, उसमें सब समाया है। बाबा कहता है बाबा में सब संसार समाया है, बाबा में ही व्यक्ति और वैभव सब हैं। भगवान को पाकर के हमने उस सुख को पा लिया। अब ईश्वर को याद करके मन सुखी होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता, क्योंकि बाबा से हमें सर्व संबंधों का सुख मिलता है। हम अतीन्द्रिय सुख इसको कहते हैं, दुनिया में जो सुख लेते हैं लोग, मतलब खुशी होती है, वो इंद्रियों के आधार पर है, अच्छा देख लिया तो खुश, हाँ, अच्छा सुन लिया तो खुश, अच्छा खा लिया तो खुश, यही सब है ना इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के रसों से वो खुश होते हैं। लेकिन जो आत्मिक सुख है, जो ईश्वरीय सुख है, परमात्मा सुख का अनुभव तो उनको नहीं होता। हम बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा वो सुख हमें देते हैं, वो बेहद की अविनाशी खुशी का आधार है, हद का आधार नहीं है, क्योंकि वो अल्पकाल के हैं, वो तो जब तक आप कर रहे हैं तब तक हैं, वो आधार खत्म हुआ खुशी भी खत्म, लेकिन बाबा तो सदा ही है, सदा हमारा साथी है, जब चाहे जहां चाहे बाबा को याद करो। दुनिया वाले संबंध तो धोखा भी देंगे आपको, बाबा से सर्व संबंध है ना हमारे। तो दुनिया में मानो जिस संबंध से हम सुख का अनुभव करते हैं, आज वो सुख दे रहा है, कल दुख भी दे देगा। आज प्रेम कर रहा है, कल नफरत भी कर सकता है, धोखा मिल जाता है ना दुनिया में। भगवान तो कभी भी हमें धोखा नहीं देते, वो तो सदा ही सुखदाता है, सदा ही बाबा प्रेम का सागर है। फिर साथ साथ में बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, वो भी बेहद की प्राप्तियां हुई हैं, जो अभी हमने सुना, उन प्राप्तियों की खुशी। और कितनी ऊंची अथॉरिटी है भगवान, उस भगवान के साथ हमारा संबंध, हम उसके बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, अधिकारी हैं हम। दुनिया में भी किसी बड़े के साथ संबंध होता है ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है, उनकी नशा अलग ही होता है ना। मेरा सो एंड सो ये मिनिस्टर है, वो उस नशे से बताएंगे उसको, जो भी हमारा संबंधी होगा, खुद नहीं होंगे, वो है तो भी हम उसको फील करते हैं। तो सोच सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चे होंगे या प्रेसिडेंट के बच्चे होंगे, वो भी अपने को उसी पोस्ट पे ही फील करते हैं जिस पोस्ट पे उनके पिता होते हैं मानो। तो यहाँ भी हमारा पिता कौन है, हमारा शिक्षक कौन है, हमारा सद्गुरु कौन है। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि वो स्मृति ही हमें स्थिति का अनुभव कराती है। तो बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ स्मृतियां दी हैं, कितनी बाबा ने हमें याद दिलाई स्मृतियां, हम कौन थे, हम तो सब भूल चुके थे, हम ही देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। तो ऊंची स्मृतियों में रहेंगे तो वो ऊंची स्थिति बनेगी और वही खुशी का अनुभव हमें होगा, है ना। स्वमान, रोज स्वमान मिलता है आपको भट्टी में, आज का स्वमान क्या है, माया जीत विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प के हम विजयी आत्माएं हैं, बाबा के चुने हुए हम विशेष रतन हैं, विशेष आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, ऊंच और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण जीवन सबसे ऊंचा जीवन माना जाता है, और उसमें भी हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तो जो हम बाबा के ज्ञान का श्रवण करते हैं, वो भी हमें कितनी खुशी देता है। रोज मुरली सुनते हैं ना हम, मुरली सुनकर खुशी होती है, नहीं होती है? अगर मन थोड़ा भी उदास होगा, इधर उधर हो सकता है, 19-20 हुआ, मुरली सुनी और उदासी गायब। बाबा जैसे हमारे दिल की बात को सुनता है, हमें मुरली में वही पॉइंट आ जाती है, या मुरली में वही हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाता है। हमें लगता है कि बाबा ने जैसे मेरे लिए ही मुरली चलाई, लगता है नहीं लगता है, आज बाबा ने मुझे ही बोला जैसे, तो खुशी होती नहीं होती ना। ऐसा टीचर किसी को मिलेगा जो हमारे मन को पढ़ करके हमें हमारा उत्तर दे देवे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हद की प्राप्तियों के आधार पर हमारी खुशी नहीं है। हद की प्राप्तियों से खुशी हमें होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है। आज मेरे को गाड़ी लेनी है और मैं गाड़ी ले आती हूँ, तो वो गाड़ी मुझे खुशी देगी कि नहीं देगी? देगी। वो मैंने एक इच्छा की, एक शुभ संकल्प कहो या जो भी कहो, वो मेरा पूरा हुआ तो खुशी हो गई। लेकिन वो सदा खुशी नहीं देगी मेरे को, वही गाड़ी मेरे को हेडेक भी दे सकती है। अब मैंने उस गाड़ी को कुछ समय चलाया और कुछ समय के बाद किसी ने ठोक दिया उसको, अब उसके पीछे कितना सिर दर्द होता ही नहीं होता, पुलिस के चक्कर भी हो जाते हैं कई बार, तो वही गाड़ी मुझे दुख भी दे रही है अभी। लेकिन अगर बाबा का आधार है हमें, तो ये स्थितियां ऊपर नीचे भले होती रहे, होंगी भी सही, ऐसे थोड़ी कि नहीं होंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, बाबा ऐसे थोड़ी कहता है। हमारे जीवन में कोई पेपर नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी बाबा कहता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन दुख की स्थिति में भी मैं खुश हूं, उदासी के समय में भी माना परिस्थिति उदासी पैदा करने वाली है, गम देने वाली है, दुख देने वाली है, लेकिन उस समय भी मेरा मन खुश रह सकता है, दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है। ये पावर है ज्ञान और योग की। कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, पूछो अपने आप से, कर सकते नहीं कर सकते? वो अनुभव करना ही यथार्थ खुशी है, उसको एवर हैप्पी कहेंगे। खुशी में खुश रहना तो सभी खुश रहते हैं, दुनिया भी खुश रहती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हम खुश हैं क्योंकि कौन है हमारा? बाबा है। और हमारी प्राप्तियां किससे हैं? बाबा से है। हमारे जीवन का आधार बाबा है। और फिर बाबा ने हमें सेवा करनी भी सिखाई है, वो सेवा भी हमें खुशी देती है। जितना हम खुश लोगों की सेवा करते हैं उतना हम दुआएं लेते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं कि वो सेवा अगर निस्वार्थ है, निर्विघ्न है, तो सेवा सच्ची खुशी देती है, वो सच्ची सेवा है। लेकिन अगर कोई सेवा मुझे उलझन में डालती है, कोई सेवा मुझे अपनी स्थिति से नीचे ले आती है, होता है, सेवा में विघ्न भी आते हैं क्योंकि सेवा में संगठन होता है, और अगर विघ्न आते हैं और उसके कारण मेरी खुशी गुम हो रही है, तो बाबा कहता है ऐसी सेवा छोड़ दो लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। खुशी आपकी प्रॉपर्टी है। कोई हद की प्राप्ति से आपको परेशानी हो रही है उसको छोड़ दो लेकिन खुशी नहीं छोड़ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर ये शरीर भी जाए तो खुशी से जाए। माना शरीर छोड़ते समय भी कैसे कैसे जा रहे हैं? खुशी से जा रहे हैं। नहीं तो मृत्यु का भय इंसान के लिए सबसे बड़ा भय होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह आत्मा को अपने शरीर से ही होता है। कोरोना के समय में भी ज्यादा लोग कैसे मरे? बीमारी से ज्यादा नहीं मरे, भय से ज्यादा मर गए, है ना? तो इसीलिए मृत्यु का भी भय नहीं है ना, क्योंकि मालूम है आदि मध्य अंत, मालूम है ना, हमें तो सब नॉलेजफुल बनाया है ना बाबा ने, तो जाना भी है तो खुशी खुशी जाना है। तो ऐसे हमें संगम युग में भी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहना है, क्योंकि उसका आधार बाबा है और बाबा ने हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बनाया है। ठीक है, ओम शांति। तो अभी हम योग करेंगे। हाँ, अपने मन को ले चले इस देह और देह की दुनिया से पार, प्यारे बाप दादा के पास, वतन में, बाबा के समान मैं आत्मा भी प्रकाश की काया में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा अति स्नेह की दृष्टि से मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। मैं स्वयं को बाबा के स्नेह में समाया हुआ अनुभव कर रही हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा आपने मुझे अपना बनाया है। मुझे ईश्वरीय प्यार, रूहानी प्यार देकर मेरे जन्म जन्मांतर के आश आपने पूरी की है, आपकी याद मुझे अतींद्रिय सुख का अनुभव कराती है। महसूस करें मैं बाबा के अति समीप और साथ हूँ। बाबा के मस्तक से शक्तियां मुझ आत्मा में समा रहे हैं। मैं आत्मा सदा बाबा को अपने साथ अनुभव करती हूँ। बाबा और मैं शिव शक्ति रूप में कंबाइंड हैं। बाबा ने मुझे सर्व संबंधों का सुख दिया है। माता पिता के रूप में मैं ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने मुझे अपने वर्षे का अधिकारी बनाया है। शिक्षक के रूप में मुझे तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान बाबा से मिला है। बाबा ने मुझे स्मृतियां दिलाई हैं। मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। देवता बनने वाले, पूज्य बनने वाले आत्मा हूँ। सतयुग के आदि में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी। मैं आत्मा माया जीत प्रकृति जीत थी। और अब पुनः बाबा मुझे सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। बाबा आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। आप में ही संसार समाया है। आप ही करण करावन हार हैं। हर कर्म में मेरे साथी हैं। मेरे मन के सच्चे मीत हैं। और अब ले चले मन को अपने घर परम धाम में। अशरीरी स्थिति का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, परम पवित्र हैं। मैं उनके शांति के, पवित्रता के प्रकंपनों में, आभा मंडल में स्वयं को भी है। शांत और पवित्र स्थिति में अनुभव कर रही हूं। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मैं अपने अनादि स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सत्व प्रधान मुझ आत्मा का ये अनादि स्वरूप है। परम धाम में बाबा के साथ मैं लाइट हाउस के रूप में संपूर्ण विश्व की आत्माओं को शांति के प्रकाश शक्तियों के प्रकंपन फैला रहे हैं। विश्व की आत्माएं जो दुखी और अशांत हैं, माया के परवश हैं, उन आत्माओं का कल्याण हो, वो भी अपने पिता से सुख शांति का वर्षा प्राप्त करें। ये मेरी शुभ भावनाएं हैं।